अध्याय दो मौर्यकालीन आर्थिक जीवन भूमिका। मौर्यकालीन भारत इस देश की समृद्धि का स्वर्णिम युग था। आर्थिक सभ्यता के विकास की दृष्टि से यह कृषि युग कहा जा सकता है। इस समय भारत में कृषि का बड़ा ही व्यापक रूप से विकास हो चुका था। इसके अतिरिक्त आर्थिक जीवन को समृद्ध बनाने वाले अन्य उद्योग और शिल्प भी विकसित हो गए थे। इसके अतिरिक्त आर्थिक जीवन की अन्य संस्थाओं का भी विकास हो गया था। इन सब के उदाहरण से यह पता लगता है कि इस समय तक भारत का आर्थिक जीवन काफी हद तक व्यवस्थित हो गया था। आर्थिक जीवन मौर्यकालीन आर्थिक जीवन की विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर एक, कृषि और उसकी प्रगति। मौर्य युग में कृषि भारत के अर्थतंत्र का मुख्य आधार थी। इस विषय में तत्कालीन विदेशी यात्री मगस्थनीज के वर्णनों से उस समय के आर्थिक जीवन के विषय में काफी अधिक जानकारी होती थी। मगस्थनीज के वर्णनों के अतिरिक्त कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भी इस समय की कृषि संबंधी व्यवस्था और स्थिति के विषय में काफी जानकारी उपलब्ध होती है। नंबर दो, भूमि और किसानों की स्थिति। इस समय काफी मात्रा में भूमि उपलब्ध थी और किसान खेती की उपज से अपना जीवन निर्वाह कर लेता था। इसका अर्थ यह है कि किसान खुशहाल थे। खेती की व्यवस्था को इस समय काफी पवित्र माना जाता था। इससे यह सिद्ध होता है कि इस समय खेती को सब प्रकार से प्रोत्साहन दिया जाता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से यह पता लगता है कि भूमि को विकसित करने का उत्तरदायित्व राजा का था। भूमि तैयार करने के बाद से किसानों को दे दी जाती थी, किंतु इस भूमि पर किसानों का अधिकार केवल उनके जीवन काल तक ही सीमित होता था। खेती करने के बदले में किसानों को राजा को कर देना होता था। संभवतः इस समय खेती करने वालों को ही भूमि देने का सिद्धांत मान्य था। यदि कोई व्यक्ति किसी बंजर या खेती के लिए अयोग्य भूमि को खेती के योग्य बनाता था तो वह उससे वापस नहीं ली जाती थी। खेती ना करने वाले किसान से भूमि वापस लेकर दूसरे किसान को दे दी जाती थी अथवा उस पर ग्राम मित्रों अथवा गांव की सेवा के लिए नियुक्त सेवकों और व्यापारियों द्वारा खेती कराई जाती थी। किसानों को किसी की उन्नति के लिए पशु तथा अन्य सामग्री शासन की ओर से दे दी जाती थी, जिसको वो अपनी सुविधा अनुसार लौटा सकते थे। नंबर तीन, खेती संबंधी सम्यक जानकारी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मैगस्थनीज के वर्णन से यह पता चलता है कि उस समय किसानों को खेती के विषय में सम्यक जानकारी थी। शासन की ओर से भी उनको जानकारी कराने की व्यवस्था थी। किसी भूमि पर कौन सी फसल उपजाई जाए और किस समय कौन सी फसल बोई जाए और उपजाई जाए, इस सब की जानकारी उस समय के किसानों को थी। नंबर चार, सिंचाई की व्यवस्था। मैगस्थनीज के वर्णन और कौटिल्य के अर्थशास्त्र से यह पता लगता है कि उस समय अतिवृष्टि से किसान पीड़ित नहीं होते थे, किंतु फिर भी सिंचाई के अनेक साधन नदी तालाब कुएं आदि उपलब्ध थे। इन साधनों से खेती में भली प्रकार सिंचाई हो जाती थी। नंबर पाँच, खेती के उपकरण। मौर्य काल में भी खेती मुख्य रूप से हल और बैलों से के द्वारा की जाती थी। खेती के विविध कार्यों में सहायता के लिए अनेक कर्मकार अथवा सेवक होते थे। इन लोगों को एक निश्चित भोजन अथवा वेतन दिया जाता था नंबर छह, बीजों की उत्कृष्टता और खाद का उपयोग। मौर्य युग में बीजों की उपयुक्तता और ठीक ढंग से खाद के उपयोग की व्यवस्था थी। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में इन सब बातों का वर्णन किया है। इससे यह पता चलता है कि इस समय बीजों की उन्नत किस्म तथा खाद आदि बनाने की जानकारी किसानों को थी और इसके लिए शासन की ओर से व्यवस्था भी की जाती थी। नंबर सात, विविध फसलें। उस समय सामान्यतः दो फसलें होती थी। ऐसा भी उल्लेख है कि वर्षा भी साल में दो बार होती थी और इसके कारण खेती में विशेष सहायता मिलती थी। मुख्य रूप से गेहूं, चावल, कोदो, दाल, उर्द, मुर्ग, तिलहन आदि की खेती उस समय होती थी। फसलों की व्यवस्था वैसे ही थी जैसी आजकल है, अर्थात उस समय भी रबी और खरीफ की फसलें साल में दो बार होती थी, जिनमें मोटे तौर पर वही अन्न उपजाए जाते थे जो इस समय उपजाए जाते हैं। खाद्यान्नों के अतिरिक्त कुछ व्यावसायिक फसलें भी उस समय उगाई जाती थी, जिनमें ईख कपास आदि प्रमुख है। साग सब्जी की खेती भी उस समय होती थी, फसल अच्छी होती थी। इसका मुख्य कारण था कि वर्षा ठीक ढंग से और नियमित रूप से होती थी तथा अकाल पड़ना और बाढ़ की संभावना बहुत कम रहती थी। नंबर 8, खेती का चतुर्मुखी विकास। मौर्य युग में खेती के चतुर्मुखी विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जाता था। यह स्वाभाविक भी था क्योंकि उस समय की आर्थिक व्यवस्था का यही मेरुदंड थी, किंतु इसका यह तात्पर्य नहीं कि इस समय अन्य व्यापारी व्यवस्था विकसित नहीं हुई थी। उनका भी विकास हुआ था और वे उन्नति भी कर रही थी। नंबर 9, मौर्य काल के उद्योग, शिल्प और व्यापार। मौर्य युग में किसी का चतुर्मुखी विकास तो हुआ ही था, साथ ही साथ उद्योग तथा शिल्प का भी काफी विकास हुआ था। मैगस्टनीस के भारत यात्रा वर्णन तथा कौटिल्य के अर्थशास्त्र के आधार पर यह बात सिद्ध होती है कि इस समय तक विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे विकसित हो गए थे। यह उद्योग धंधे इतने अधिक विकसित हो गए थे कि इससे हजारों लोग जीवन यापन करते थे और भारत का व्यापार दूसरे देशों से होता था। जिन उद्योग धंधों और शिल्पों का वर्णन मैगस्थनीज यात्रा वर्णन तथा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है वह निम्नलिखित है। नंबर 1, वस्त्र शिल्प और उद्योग। नंबर 2, धातु उद्योग तथा शिल्प। नंबर 3, नमक का उद्योग। नंबर 4, चमड़े के विभिन्न प्रकार के उद्योग। नंबर 5, बर्तन बनाने का शिल्प और उद्योग। नंबर 6, काठ अथवा लकड़ी के विभिन्न प्रकार के उद्योग। नंबर 7, हथियार बनाने के शिल्प और उद्योग। नंबर 8, आभूषण बनाने और बेचने का उद्योग और शिल्प। नंबर 9, पाक शास्त्र का शिल्प और उद्योग। नंबर 10, कलाकार अथवा नर्तन गायन आदि का शिल्प और उद्योग। नंबर 11, अन्य प्रकार के उद्योग। इन उद्योगों की संक्षिप्त चर्चा निम्नलिखित है। नंबर 1, वस्त्र उद्योग। जहाँ तक वस्त्रों के बनाने और उन पर कारीगरी आदि करने का प्रश्न है, मौर्य युग में इस उद्योग और शिल्प का काफी विकास हो गया था। सूती, रेशमी, ऊनी सभी प्रकार के वस्त्र बनाए जाते थे और उनका उद्योग होता था। अनेक शिल्पी रेशे और सन को काट कर उसका वस्त्र बनाते थे। इस कार्य के लिए विविध शिल्पकार और कारखाने थे। यह कारखाने भले ही आधुनिक युग के कारखाने की तरह ना हो, परंतु वे ऐसे स्थान अवश्य थे जहाँ बहुत से कर्मकार शिल्पी और कारीगर कार्य करते थे। नंबर 2, वस्त्र निर्माण के उद्योग में राजकीय नियंत्रण और प्रोत्साहन। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के वर्णन से यह स्पष्ट पता लगता है कि मौर्य युग में शासक की ओर से वस्त्र निर्माण की उद्योग और शिल्प को विशेष प्रकार से प्रोत्साहन दिया जाता था। राज्य की ओर से यह व्यवस्था थी कि विकलांग विधवाओं, कन्याओं, राजदंडित लोग, वृद्ध दासियों, वैश्याओं की वृद्ध माताओं आदि से सूत कातने आदि का काम लिया जाए। जलवायु और परिस्थितियों के अनुकूल इस साम्राज्य के विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न प्रकार के वस्त्र बनते थे। उदाहरणार्थ बंगाल में सफेद, चिकन और महीन कपड़ा बनता था और काशी में रेशमी वस्त्र बनते थे। इस सब का परिणाम यह था कि इस युग में वस्त्र उद्योग और शिल्प बहुत अधिक प्रगति कर गया था। वस्त्र उद्योग से संबंधित अन्य शिल्प और व्यवसाय भी मौर्य युग में काफी विकसित थे। यह व्यवसाय ऐसे थे जिनमें वस्त्र निर्माण की उद्योग की सामग्री का प्रयोग किया जा सकता था। वस्त्र निर्माण उद्योग से संबंधित जो अन्य शिल्प और व्यवसाय इस युग में विकसित थे, उनका अध्ययन इन शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। नंबर 1, कवच सिलने और बनाने का काम। नंबर 2, कपड़े और सूत रंगने का काम। नंबर 3, रस्सी बनाने का काम। नंबर 4, कपड़े और सूत धोने अथवा साफ करने का काम। नंबर 5, कपड़े सिलने का काम। नंबर 3, धातु उद्योग और शिल्प। धातु उद्योग मौर्य युग की काफी उन्नतशील था, उसका अनुमान कौटिल्य के अर्थशास्त्र से स्पष्ट रूप से लग जाता है। अर्थशास्त्र से इस बात का अनुमान स्पष्ट हो जाता है कि मौर्य युग में खानों से खनिज पदार्थ अथवा कच्ची धातु निकालना, उनका शोधन करना और धातुओं से आभूषण, उपयोगी उपकरण, हथियार आदि बनाने का उद्योग काफी विकसित और उन्नतशील था। मौर्य युग में खनिज पदार्थ से संबंधित एक पृथक विभाग था जिसका अध्यक्ष एक आमात्य अथवा मंत्री होता था, उसे अकाराध्यक्ष कहा जाता था। अकाराध्यक्ष एक वरिष्ठ कोटि का मंत्री होता था, इसका अनुमान उसके अंतर्गत कार्य करने वाले अनेक अमात्यों से लगाया जा सकता है। अकाराध्यक्ष नामक अमात्य धातुओं को निकालने की जानकारी, धातुओं को पहचानने आदि की जानकारी रखता था। इन अधिकारियों को खान का पता लगाना, उनकी खुदाई करने, उनके उपयोग करने आदि की व्यवस्था करने का दायित्व शासन द्वारा सौंपा जाता था। नंबर चार, धातुओं की वस्तुओं के निर्माण के लिए कारखाने। मौर्य युग में धातुओं की वस्तुएं और उपयोगी उपकरणों के निर्माण के लिए अनेक कारखाने थे, जिनमें बहुत से कर्मचारी और कारीगर कार्य करते थे। धातुएं उस समय भी दो प्रकार की होती थी, जो एक उपयोगी धातु होती थी और दूसरी वे जो मूल्यवान होती थी और जिनका उपयोग आभूषण आदि बनाने के लिए होता था। मेगस्थनीज नामक यूनानी यात्री ने अपनी यात्रा वर्णन में कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र में उल्लेखित अनेक बातों की पुष्टि की है। उसके यात्रा वर्णन में लिखा है कि भारत भूमि के गर्भ में भी इस सब प्रकार के धातुओं के अनगिनत खाने हैं, उससे सोना चांदी बहुत होता है और तांबा तथा लोहा भी कम नहीं था। जस्ता और दूसरी धातुएं भी होती थी, इनका उपयोग आभूषणों की वस्तुओं और लड़ाई के हथियार तथा साज आदि बनाने के लिए होता था। नंबर पाँच, नमक का उद्योग। मौर्य युग में नमक निर्माण का उद्योग काफी उन्नतशील और विकसित अवस्था में था। नमक जीवन की एक आवश्यक वस्तु है और इस बात का एहसास मौर्य शासकों का था। इस बात का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि उस समय नमक उद्योग राजशासन के अधीन था और कोई भी व्यक्ति शासन से स्वीकृत पत्र अथवा अनुमति पत्र लाइसेंस प्राप्त किए बिना नमक निर्माण का उद्योग नहीं प्राप्त कर सकता था। इसके लिए धातु मंत्रालय के आमत्य अकाराध्यक्ष के अंतर्गत एक अन्य अधिकारी होता था, जिसे लवड़ाध्यक्ष कहा जाता था और जो इस उद्योग प्रशासन की ओर से नियंत्रण रखता था। लाइसेंस प्राप्त लोग नमक का निर्माण करते थे, किंतु उसकी बिक्री राज्य सरकार के माध्यम से होती थी। इस देश में उस समय दूसरे देशों से भी बिकने के लिए नमक आता था, किंतु उस पर भी शासन की ओर से कर लगाया जाता था। इसका अर्थ यह है कि मौर्य काल में नमक का उद्योग विभाग शासन के नियंत्रण में होता था। संभवतः उस समय नमक के व्यापार की वैसी स्थिति थी जैसी सन 1973-74 में भारतवर्ष में गेहूं के व्यापार की थी। नंबर छह, चमड़े के विभिन्न प्रकार के उद्योग। मौर्य युग में चर्म उद्योग भी काफी विकसित और उन्नतशील दशा में था। उसका अनुमान कौटिल्य के अर्थशास्त्र के स्पष्ट रूप से लग जाता है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में विभिन्न प्रकार के खालों का वर्णन किया है और उनके विषय में जानकारी भी दी है। इन खालों की उपलब्धि के स्थान पर अर्थशास्त्र में वर्णित है। इन वर्णों से यह पता लगता है कि मौर्य काल में लोगों को पशुओं के विषय में जानकारी थी, जिनसे विभिन्न प्रकार की खालें उपलब्ध होती थी। इन वर्णों से यह भी पता लगता है कि उस समय जंगली पशुओं को मारकर खाले एकत्रित करने, उनको कमाने और उनसे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाने का उद्योग काफी उन्नतशील अवस्था में था। खाले कुछ तो जीवित पशुओं को मारकर एकत्रित की जाती थी और कुछ स्वयं मरे हुए पशुओं से प्राप्त की जाती थी। मेगस्थनीज ने अपने भारत यात्रा वर्णन में इन सब बातों का विस्तार से उल्लेख किया है। जो पशु स्वयं मर जाते थे अथवा जिनका वधकों द्वारा बूचड़ खानों में कर दिया जाता था, उनकी खालों से जूते बनते थे। गाय, भैंस, बैल, बकरी, हिरण, नील गाय, सांभर आदि पशुओं से खाले प्राप्त की जाती थी। मेगस्थनीज के भारत यात्रा के वर्णन से इस बात का स्पष्ट पता लग जाता है कि उस समय चमड़े के जूते बनाने का उद्योग काफी उन्नतशील अवस्था में था। भारतवासी सफेद रंग के बड़े सुंदर जूते पहनते थे, जिनकी एड़ियां ऊंची होती थी। इस सब से यही पता लगता है कि उस समय भारत में चमड़े के विभिन्न प्रकार के उद्योग काफी उन्नतशील अवस्था में थे और राज्य द्वारा इस उद्योग पर थोड़ा बहुत नियंत्रण भी लग जाता था और इसे प्रोत्साहन भी दिया जाता था। नंबर सात, बर्तन बनाने और शिल्प उद्योग। नंबर सात, बर्तन बनाने और शिल्प का उद्योग। मौर्य युग में बर्तन बनाने का उद्योग भी बहुत ही विकसित और उन्नतशील अवस्था में था। धातु मंत्रालय के आमात्य अथवा अकाराध्यक्ष के अंतर्गत एक ऐसा अधिकारी जो लोहा, तांबे, शीशे, पीतल, कांसे आदि धातुओं से विभिन्न प्रकार के उपकरण बर्तन और वस्तुएं तैयार कराता था। इसका अर्थ यह है कि धातुओं में बर्तन बनाने के उद्योग पर भी राजकीय नियंत्रण था। इस अधिकारी कोष्टक में लोहाध्यक्ष का मूल काम विविध प्रकार के धातुओं से विविध प्रकार की वस्तुएं और बर्तन बनाने का कार्य कराना प्रमुख था। इस युग में केवल धातुओं से ही बर्तन नहीं बनते थे, मिट्टी छाल आदि से भी बर्तन बनते थे। इससे यही पता लगता है कि बर्तन बनाने का उद्योग काफी उन्नतशील और विकसित था और उस पर राजकीय नियंत्रण भी था। शासन अर्थात मौर्य शासन जहाँ धातुओं से विविध प्रकार के वहाँ प्रोत्साहन भी होता था। इसका अर्थ यह है कि मौर्य और राजकीय नियंत्रण के साथ साथ शासन का बनाने के लिए शिल्प और उद्योग के समीपवर्ती देशों में भी था। इससे इस बात का सैनिक शक्ति काफी सुदृढ़ थी, किसी भी सेना की क्षमता थी और शासकों की सशक्त सेना से इस बात की स्वतः पुष्टि हो जाती है। उसमें और उद्योग काफी महत्वपूर्ण था और यथेष्ट मात्रा में इसके लिए अलग आमत्य अथवा मंत्री होता था जिसे था। इस आमत्य के कर्तव्यों का कौटिल्य के लग जाता है कि उस समय अस्त्र शस्त्र के निर्माण का में था। आयुधाकराध्यक्ष अपने अर्थशास्त्र में इस विषय में विस्तार से उल्लेख मिलता है कि मौर्य युग में हथियार बनाने के शिल्प और उद्योग पर काफी उन्नतशील दशा में था। संभवतः इसी कारण मौर्य शासन ने कर सके। नंबर 9, काठ अथवा लकड़ी के विभिन्न प्रकार के उद्योग। जिस प्रकार कौटिल्य ने खाल को एक बनाया है, उसी प्रकार के आर्थिक जीवन में लकड़ी अथवा घाट के युग और शिल्प का विशेष स्थान था। मौर्य शासक जंगलों के आर्थिक बहुत्व को आर्थिक महत्व जानते थे। उन्होंने आधुनिक युग की भांति उसका एक अलग अध्यक्ष कोषा अध्यक्ष नामक कर्मचारी होते थे जिनका काम वनों की रक्षा और उनकी देखभाल करना पर अभिवृद्धि में योगदान आदि पहुँचाने वाला दंडित होता है और देश की ही माना जाता है। उसी प्रकार मौर्य युग में भी किसी को अधिकार नहीं था और ऐसा करने वाले को दंड अथवा वन संपत्ति के विभिन्न प्रकार के उपयोग। मौर्य युग में जो लकड़ी वनों से उपलब्ध होती थी उसके अनेक उपयोग थे। भोजन पकाने सुंदर और उपयोगी कोषाध्यक्ष अथवा वन संपत्ति में से प्राप्त लकड़ी विशेषताओं के आधार पर का काल सौंपा हुआ था। अर्थशास्त्र में वर्णित के वर्णों से यह स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि बहुत विकसित अवस्था में था और उसे राजकीय संरक्षण प्राप्त था। आभूषण बनाने और बेचने का उद्योग और शिल्प धातु उद्योग की में उल्लेख हो चुका है कि मौर्य युग में धातुओं के आभूषण बनते थे। आभूषण बनाने वाले कारीगर काफी कुशल थे और आभूषण बनाने और बेचने का उद्योग और व्यवसाय करते थे। आभूषणों का उपयोग स्वाभाविक रूप से हो जाता है। मौर्य युग में भी विभिन्न प्रकार के आभूषण धारण करते थे। आभूषणों का धारण करना पुरुष लोग भी आभूषण पहनते थे। यह आभूषण सोने और चांदी के होते थे। आभूषण बनाने और बेचने के शिल्प उद्योग और व्यवसाय राजकीय निर्भरता का अनुमान इस बात से लगा लग जाता है कि उस समय स्वर्णाध्यक्ष कहलाता था। इस प्रकार के और चांदी के आभूषण बनते थे। इन आभूषणों के निर्धारित मानकों की निर्माण हो इसके लिए आधिकारिक धातुओं की शुद्धता की जांच के लिए प्रयोग किया जाता था। आभूषण रहते थे और उनमें अनेक प्रकार के रत्न रहते थे। यात्रा वर्णन और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के वर्णन से मिलता है। पाक शास्त्र और शिल्प उद्योग में वर्ण उसने एक व्यवसाय का रूप भी धारण कर लिया था। कौटिल्य के आधार में अनेक प्रकार का भोजन मांस आदि बनाने वाले मिलता है। वर्णन से यह पता लगता है कि उस समय मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों प्रकार का भोजन बनाने और लोगों को उसे देने का उद्योग और व्यवसाय काफी तरक्की हो गया था। एक बात और सिद्ध होती है कि उस समय व्यवसायी और दूसरे लोग भोजन बनाकर खाना खाने का अवसर नहीं पाते थे और बाजार में भोजन और दूसरी करते थे। नंबर 13 कलाकार अथवा नर्तन और मौलिक के दूसरे के मनोरंजन करना और शिल्प उद्योग का अवस्था में था। उसमें अनेक ऐसे लोग थे जो नित्य गायन वादन तथा अन्य दूसरों का मनोरंजन करने का कार्य करते थे। यह लोग इन्हीं लोगों के करते थे। कौटिल्य के गायन वादन नाट्य कला आदि करने वाला है। कौटिल्य को यह व्यवसाय पसंद नहीं था क्योंकि उनके विचार लोग डालते थे। यह भावना होते हुए भी इन कलाकारों को अर्जन करने का अवसर मिलता था। इस बात का प्रमाण है। इन कलाकारों के अतिरिक्त इस समय मांग की देवताएं अथवा रूपा जीवाएं एक और तो राजकीय थी और दूसरी ओर शक्ति थी। इन सब क्रियाकलापों पर राजकीय नियंत्रण था। उद्योग और व्यवसाय उपयुक्त व्यवसायों के यह व्यवसाय तत्कालीन समाज का जीवन और अंग थे। अधिक महत्वपूर्ण नहीं था। इसका कारण इनकी गणना की है कि अन्य व्यवसायों में प्रमुख थे। नंबर का मूर्ति बनाने का काम करने वाले लोग यह लोग देवताओं तथा अन्य लोगों को मूर्तियों का निर्माण करते थे। नंबर का प्रकार की मूल्यवान मड़िया और आभूषण बनाने वाले शिल्पकार फूलों के आभूषण और मूर्तियां आदि बनाने वाले शिल्पकार और चिकित्सा करके जीविका कमाने वाले निष्कर्ष इस प्रकार स्पष्ट है कि मौर्य व्यवसाय और जो काफी विकसित अवस्था में थे। व्यवसाय और उद्योग आदि मौर्य में काफी विकसित थे। मौर्य युग में व्यापार मौर्य भारत के आर्थिक जीवन का अनेक दृष्टियों से छोटे छोटे व्यवसायी तत्वों के अतिरिक्त बड़े बड़े व्यवसायिक और व्यापारिक केंद्र छोटी छोटी दुकानें तथा अनेक स्थानों पर बड़ी बड़ी में विविध कोटि के शिल्पियों और कर्मकारों द्वारा तैयार किए हुए लिए आते थे और व्यवसायिक संगठन देश के अंदर तथा व्यवसाय की देखभाल करते थे। नंबर का व्यापार के प्रोत्साहन और नियंत्रण की मौर्य युग में व्यापार को प्रोत्साहन देने और रखने के लिए एक विभाग था। यह विभाग आधुनिक युग के वाणिज्य अथवा उद्योग विभाग है द्वारा निर्धारित व्यवसायिक नियमों का उल्लंघन करने का अर्थ यह है कि उस समय व्यापारियों के मुनाफे की सीमा पर नियंत्रण था, नाप तौल करनी होती थी और उपयुक्त गुणात्मक स्तर के अनुकूल माल तैयार करना और बेचना होता था। मैगसनीज द्वारा प्रस्तुत अपने इन बातों की पुष्टि होती है। नंबर खा माप तौल, तौल के आधार पर रत्ती मासा तोला से आदि के अनुरूप आड़त प्रस्त कुटुंब आदि नाम दिए जाते थे। मापों के लिए महत्व का उपयोग होता था। इस समय तक लोहे के बाट प्रयोग में आने लगे थे। वस्तुओं के नापने की अनेक विधियां थी और इनके माप राज द्वारा निर्धारित थे। भूमि आदि के नापने के लिए दूसरे माप थे तथा कपड़ा आदि नापने के लिए दूसरे माप थे। के नापने के अनेक मापों का वर्णन है, इससे यही पता लगता है कि वस्तुओं के अनेक माप थे। नंबर का आंतरिक तथा विदेशी व्यापार की उन्नत अवस्था, आंतरिक व्यापार के साथ आंतरिक व्यापार के साथ दूसरे देशों से व्यापार भी बहुत विकसित था। दूसरे देशों को समान और दोनों हाथों से लिया जाता था। इसका अर्थ यह है कि इस समय जल और स्थल दोनों ही मात्रा की अवस्था में थे। एक विद्वान के तत्व में इस समय खाले मड़ी मड़िया ऊनी कम्बल सूती वस्त्र रेशम आदि दूसरे देशों के व्यापार में व्यापार के लिए जाते थे। व्यापार में राज्य की ओर से विशेष नियंत्रण था और देश पर उस व्यापार की जांच की जाती थी। यह व्यवस्था प्रचलित है। भारत का उस समय मुख्य रूप से चीन आदि से व्यापारिक संबंध था। इसके अतिरिक्त ऐसा मान किया जाता है कि उसके सीमावर्ती देशों से भी भारत का व्यवसाय होता था। इससे इस बात की भी पुष्टि होती है कि काफी विकसित हो गई थी। नंबर सीपीओ के अतिरिक्त कर्मकारों अथवा श्रमिकों के संगठन भी कि मौर्य युग में श्रमिक संगठन आंदोलन अथवा ट्रेड यूनियन था। कृषकों के ये संगठन मिलजुल कर ऐसा काम करते थे थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस बात का विस्तार से उल्लेख है। व्यापारियों के ऐसे संगठन जो बाजार पर नियंत्रण रख ऊंचे मूल्य पर वस्तुओं के बेचने और प्रयास करते थे। इसका अर्थ यह है कि उस समय भी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इस प्रकार की संस्थाओं पर नियंत्रण लगाने की मौर्यकाल की मुद्रा पद्धति कौटिल्य के अर्थशास्त्र काफी विकसित हो गई थी। शासन का इस पर नियंत्रण था कि शासन के लिए एक मंत्री होता था जिसे लक्षणाध्यक्ष का प्रचलन था। नंबर एक कोष प्रवेश मुद्रा, मुद्रा मौर्य काल में मुद्रा नियंत्रित होती थी। में इसी मुद्रा को मान्यता थी। इसका एक मानक मूल्य होता था। नंबर टू मुद्रा, यह मुद्रा कोष प्रवेश की तुलना में कम मूल्य की होती थी। इस मुद्रा की राजकीय क्रय विक्रय में मान्यता नहीं थी। मौर्य युग में विभिन्न प्रकार के सिक्के प्रयोग में आते थे। धातुओं का प्रयोग होता था। इस समय सोने चांदी ताबे में आते थे। मुख्य सिक्का पण बताया जाता है जिसे रुपये भी कहा जाता था। एक मानक रूप था और राज्य द्वारा उस पर नियंत्रण पैसा बनाता था अथवा किसी का बनाया हुआ सिक्का हुआ होता था तो उसके लिए दंड निर्धारित था। इस के योगदान पर नहीं फरमाए जा सकते थे और इसके लिए अलग विभाग था जिसका प्रधान कुछ स्थानों से चांदी का एक और सिक्का जिसे आहत हुआ। आहत नामक सिक्का बहुत ही बड़ी मात्रा में भारत के विविध भागों से उपलब्ध है। पहली शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी पूर्व तक माना जाता है। सिक्कों पर अनेक प्रकार के चिन्ह अंकित हैं। ये चिन्ह विभिन्न दंतों के प्रतीक बताए जाते हैं। मौर्य शासन द्वारा चलाए गए सिक्कों पर के प्रतीकों को छोड़ दिया गया है। चांदी के जो सिक्के मिले हैं कौटिल्य ने अपने बताया है और इनमें पैसे का लेन देन। मौर्य युग का आर्थिक काफी उन्नत था। व्यापार और व्यवसाय के लिए धन की आवश्यकता होती है। व्यापारी के लिए कभी कभी ऐसा समय आ जाता है कि दूसरों से धन लेना होता है। अर्थशास्त्र के अनुसार इस समय उधार लेने और देने का उधार देने वाला उधार देने की शुद्ध होता था प्राप्त करता था। उधार लेने वाले को मिल गई राशि के बदले में सूद देना होता था। इस समय नागरिकों का ऐसा वर्ग भी था जो ब्याज करने वाले व्यक्ति रोग से पीड़ित शिक्षा रत अल्प नंबर खा महाजनों की प्रथा और ऋण की अदालत महाजन नामक संस्था आर्थिक जीवन का एक अंग बन गई थी। ऋणी द्वारा ऋण अदा न कर पाने पर जमानत को अदा करना होता था। कर्जदार के मर जाने पर उसके ऋण की अदायगी करनी होती थी। इस संबंध में निश्चित रूप से राजकीय नियम बने हुए थे। लेन देन के व्यापार और ब्याज की दर नंबर का लेन देन के राजकीय नियंत्रण मौर्य काल में राज्य का धन के लेन देन और शासन द्वारा कुछ अधिकारियों की नियुक्ति हुई थी। राजकी उचित थी। 100 पर ऋण लेने पर 125 पर लेना नियमानुसार मान्य था किंतु व्यवहारिक जीवन में महाजन इसे वसूल करते थे। नंबर घा ऋण की वसूली में प्राथमिकता का निर्धारण यदि किसी व्यक्ति ने एक से अधिक व्यक्तियों से ऋण लिया हो तो लेकर उसके विरुद्ध एक ही न्यायालय में मुकदमा नहीं दायर कर सकते थे। मुकदमा दायर करना होता था और जिस व्यक्ति ने पहले ऋण दिया है होता था। ऋण संबंधी मुकदमा दायर करने पर महाजन लोगों की गवाही प्रस्तुत करनी होती थी। एक गवाही के आधार पर फैसला नहीं होता था। लथा का दायित्व मौर्य युग में व्यवसायिक संगठनों के पास धन जमा करने की व्यवस्था था। ऐसा धन उपनिधि कहा जाता था। लथा की लथा के लिए वह संस्था जिसके पास धन होता था। इस प्रकार अमानत के रूप में जमा की हुई धन के लिए की गई है उत्तरदायी ही नहीं होता था वरन उसे व्यय करने और उसका उपयोग करने का अधिकार भी नहीं था।